पृष्ठ संख्या 261, प्रेमचंदोत्तर काल में उपन्यास की अनेकानेक प्रवृत्तियां विकसित होती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति तक नारी प्रधान उपन्यासों में नारी, चंपाकली, झुनिया, देवदासी, नरमेध, त्यागपत्र, शेखर एक जीवनी, दिव्या, चढ़ती धूप आदि को परिगणित किया जा सकता है, जिनमें नारी विषयक नव्यवादी चिंतन उपलब्ध होता है। स्वातंत्र्योत्तर काल में रतिनाथ की चाची, बल चन्मा, मैला आंचल, सुखदा, नदी के द्वीप, दिगंबरी, डूबते मस्तूल, झूठा सच आदि उपन्यास आते हैं, जिसमें नारी विषयक समस्याओं तथा नारी विषयक नूतन दृष्टिकोण पाया जाता है। प्रथम अध्याय में सन 60 तक के उपन्यासों की संक्षिप्त चर्चा इसलिए हुई है कि उसके बाद के उपन्यासों पर आगे विस्तार से विचार हुआ है। इन उपन्यासों के अध्ययन से इतना लक्ष्य किया गया है कि जैसे जैसे आर्थिक दृष्टया नारी की स्थिति सुदृढ़ होती गई है, वैसे वैसे उनकी चेतना में गुणात्मक परिवर्तन आया है। पैराग्राफ चेंज। यहाँ यह भी लक्षित किया गया है कि वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी, परंतु बाद में उत्तर वैदिक काल, धर्मशास्त्र काल तथा मध्यकाल तक आते आते स्त्रियों की स्थिति में निरंतर गिरावट आती गई। ब्रिटिश शासन में ईसाई मिशनरियों के द्वारा हिंदू धर्म पर जो हल्ले हुए, उसके कारण हिंदू धर्म के मूलभूत सिद्धांतों और तथ्यों की पड़ताल शुरू हुई। परिणाम स्वरूप 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पृष्ठ संख्या 262 अनेक नवजागरणी आंदोलन हुए, जिनका निर्देश ऊपर किया जा चुका है। 20वीं शताब्दी के अंत तक आते आते भारतीय स्त्री की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है और चंद्रमुखी बोस, मदाम भिकाजी कामा, श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित, सुवर्ण कुमारी देवी, श्रीमती हंसा मेहता, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती किरण बेदी, कुमारी पीटी उषा जैसी कुछ महिलाओं ने नाना क्षेत्रों में अपने शक्तिशाली तथा प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व का परिचय दिया है। पैराग्राफ चेंज। यह निर्दिष्ट किया जा चुका है कि जब नारी के मसले पर विचार करते हैं, तब उसके परिवेश को मद्देनजर रखे बिना काम नहीं चल सकता। अतः प्रस्तुत अध्ययन में भी ग्राम केंद्रित तथा नगर विषय उपन्यासों पर नारी की स्थिति को लेकर अलग अलग विचार किया गया है। सन 1961 से सन 1995 तक के ग्राम केंद्रित उपन्यासों में पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, सूखता हुआ तालाब ब्रैकेट में डॉक्टर रामदर्श मिश्र कॉमा, उग्रतारा इमरतिया ब्रैकेट में नागार्जुन कॉमा, धरती धन्ना अपना, कभी न छोड़े खेत ब्रैकेट में जगदीश चंद्र कॉमा, बबूल विभावरी बीतेगी ब्रैकेट में डॉक्टर विवेकी राय कॉमा, अलग अलग वैतरणी ब्रैकेट में शिव प्रसाद सिंह कॉमा, सफ़ेद मेमने मणि मधुकर कॉमा, राग दरबारी श्री लाल शुक्ल कॉमा, आधा गांव डॉक्टर राही मासूम रजा कॉमा, कांच घर डॉक्टर राम कुमार भ्रमर कॉमा, सांप और सीढ़ी सानी कॉमा, हौलदार चिट्ठिर सैन, एक मूठ सरसों, चौथी मुट्ठी नागवल्लरी शैलेश मटियानी कॉमा, कालिंदी ब्रैकेट में भैरवी कॉमा, 14 फेरे दो सखियां शिवानी कॉमा, सूरज के आने तक डॉक्टर भगवती शरण मिश्र कॉमा, उकाओ क्षितिज शर्मा कॉमा, एक टुकड़ा इतिहास गोपाल उपाध्याय कॉमा, नच्यो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर तथा इदम नमम ब्रैकेट में मैत्रेयी पुष्पा जैसे उपन्यासों का अध्ययन प्रस्तुत प्रबंध में किया गया है। वहाँ कुछ तेज तर्रार नारी पात्र भी मिलते हैं, तो कुछ डब्बू किस्म के। प्राय देखा गया है कि उच्च वर्गीय समाज में नारी का व्यक्तित्व कुछ दबसा गया है, निम्न वर्गीय समाज में नारी अपेक्षाकृत अधिक उन्मुक्त है, क्योंकि परिवार के आर्थिक दायित्वों में उसका बराबर का सरोकार रहता है। पैराग्राफ चीन। तीसरे अध्याय में नगरीय परिवेश के उपन्यासों को लेकर आलोच्य मुद्दों पर विचार किया गया है। मोहन राकेश का अंधेरे बंद कमरे, भगवती चरण वर्मा का रेखा, कमलेश्वर का डाक बंगला, निर्मल वर्मा का वे दिन, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का मुर्दा घर, रमेश बख्शी का बैसाखियों वाली इमारतें, राजेंद्र यादव का अनदेखे अंजाल पुल, राजेंद्र यादव मन्नू भंडारी कृत एक इंच मुस्कान, राजकमल चौधरी कृत मछली मरी हुई, लक्ष्मीकांत वर्मा कृत टेरा कोटा, शशि प्रभा शास्त्री कृत नावे, ममता कारिया कृत बेघर नरक दर नरक, निरुपमा सेवती कृत पतझड़ की आवाजें, राजी सेठ कृत तत्सम, कृष्णा सोबती कृत सूरजमुखी अंधेरे के, कांता भारती कृत रेत की मछली, उषा प्रियंवदा कृत पचपन खंभे लाल दीवारें, मेहरुनिसा परवेज कृत आँखों की दहलीजें, गंगा प्रसाद विमल कृत अपने से अलग, मंजुल भगत कृत अनारो, सुरेंद्र वर्मा कृत मुझे चांद चाहिए, प्रभात खेतान कृत छिन्नमस्ता आदि उपन्यासों को आधार रूप में लेते हुए नगरीय परिवेश में नारी के विभिन्न रूपों को विश्लेषित किया गया है। इस अध्ययन से कई तथ्य सामने आए हैं। नगरों में भी हमें नारी के कई कई रूप मिलते हैं। पृष्ठ संख्या 263। संपन्न और संभ्रांत वर्ग की महिलाओं की अपनी समस्याएं हैं। स्त्री पुरुष अहम की टकराहट, नारी अस्मिता, व्यक्तित्व की पहचान और उसके खतरों को यहाँ रेखांकित किया जा सकता है। शिक्षा के कारण नारी जहाँ आत्मनिर्भर हुई है, वहाँ कहीं कहीं दोहरे दायित्व बोझ से उसमें टूटन घुटन और निराशा भी आई है। नौकरी के कारण कहीं कहीं उसे आत्मघाती समझौते भी करने पड़े हैं। स्लम एरिया में नारी की स्थिति बड़ी विचित्र है। वहाँ उसे काम वाली बाई से लेकर वैश्यवृत्ति तक के काम करने पड़ते हैं। सबके अपने अपने नरक हैं। पैराग्राफ चेंज। प्रस्तुत अध्याय के दौरान कामकाजी महिलाओं का एक रूप सामने आया है। इसका अर्थ यह कतई नहीं कि दूसरी महिलाएं काम नहीं करती या निठल्ली बैठी रहती हैं। मोटे तौर पर कामकाजी महिला उसे कहा जाएगा जिसका परिवार के आर्थिक दायित्व से सीधा संबंध होता है। ग्रामीण क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल की शिक्षिकाएँ, ग्राम सेविकाएँ, कल्याण योजनाओं में काम करने वाली महिलाएं, खेतिहर मजदूरिन, कारखानों तथा खदानों में काम करने वाली महिलाएं आदि को लिया जा सकता है। यहां नर्स, मिडवाइफ, दुकानदारिन जैसे महिलाओं को भी लिया जा सकता है। औपन्यासिक अध्ययन से एक तथ्य प्रायः सामने आता है कि उक्त नाना वर्ग की महिलाओं का दैहिक शोषण भी होता रहा है। पैराग्राफ चेंज। नगरीय क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं में उच्च पदाधिकारी, डॉक्टर, प्राध्यापिकाएं, शिक्षिकाएं, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों में काम करने वाली महिलाएं, कारखानों में काम करने वाली मजदूरिनें, दूसरे परिवारों में नौकरी चाकरी का काम करने वाली बाइयां, नाटक, फिल्म, मॉडलिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग आदि का काम करने वाली महिलाएं, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में ऊंचे ओहदों पर लगी हुई महिलाएं, एयर होस्टेस आदि वर्ग की महिलाओं को परिगणित किया जा सकता है। यहाँ भी यह तथ्य सामने आया है कि छोटे पदों पर काम करने वाली महिलाओं का यौन शोषण प्रायः होता है। दोहरा दायित्व यहाँ भी एक समस्या है। पैराग्राफ चेंज। आधुनिक युग में शिक्षित महिलाओं ने हर क्षेत्र में प्रगति की है और अपनी प्रतिभा और अस्मिता का परिचय दिया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि यदि स्त्रियों को समुचित मौके प्रदान किए जाएं, तो हर क्षेत्र में वह अपनी प्रतिभा, शक्ति और लगन से उच्चाति उच्च स्थान प्राप्त कर सकती है और उसने किए हैं। परंतु हमारे औपन्यासिक लेखन में ऐसे कई क्षेत्र दर्ज नहीं हुए हैं जिनमें वाइस चांसलर, चीफ मिनिस्टर, पुलिस कमिश्नर, मेयर, फिल्म मेकर, पत्रकार, हेयर ड्रेसर, म्यूजिक कोरियोग्राफर आदि का उल्लेख किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज। कामकाजी महिलाओं की अपनी समस्याएं होती हैं। अपने नौकरी व्यवसाय के साथ न केवल उसे अपने घर परिवार के लोगों का ध्यान रखना पड़ता है, बल्कि बच्चों की परवरिश तथा उनके शिक्षा और होमवर्क के लिए भी जान सुखानी पड़ती है। कहीं कहीं उच्च पदों पर काम करने वाली महिलाओं को पृष्ठ संख्या 264 अपने अपने पतियों के हीनता बोध के कारण मनोवैज्ञानिक दबाव से गुजरना पड़ता है। अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए वे कई बार विवाहेतर संबंधों को भी विकसित करती हैं। ऐसा भी हुआ है कि कई बार पति महोदय अपने अपने आर्थिक फायदों के लिए नौकरीशुदा पत्नियों को अन्य पुरुषों से संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार कामकाजी स्त्री के जीवन में अन्य पुरुष का प्रवेश प्रायः आम सा हो गया है। पैराग्राफ चेंज। इस अध्ययन के दौरान नारी जीवन के विभिन्न पहलुओं, रहस्यों, रूपों और मुद्राओं से गुजरने का अवसर मिला है, जिसके कारण नारी के कई चेहरे सामने आए हैं। जहां एक तरफ नारी का शोषित, दमित, पीड़ित, अतिश्रमित रूप मिला है, वहां इन सब के बावजूद कुछ ऐसी तेज तर्रार, जुझारू और संघर्षशील नारियां भी दृष्टिपथ से गुजरती हैं, जिनकी जीवट और जिजीविषा की जितनी तारीफ की जाए कम है। प्रस्तुत शोध प्रबंध में ऐसी व्यक्तित्व संपन्न नारियों को अलगाने और विश्लेषित करने का एक सन्निष्ठ प्रयत्न हुआ है। समूचा पंचम अध्याय इनको समर्पित है। ये व्यक्तित्व संपन्न नारियां शिक्षित वर्ग की ही हैं, ऐसा नहीं है। कुछ तो अति सामान्य और अकिंचन परिवेश से आई हैं। जल टूटता हुआ की बदमी लवंगी, सूखता हुआ तालाब की चनैया चमारिन, बबूल की दर्पणी, सफेद मेमने की सूरजा जाटनी, सांप और सीढ़ी की धान माँ, एक टुकड़ा इतिहास की चनूली, मित्रों मरजानी की सुमित्रा वंती, धरती धरना अपना की ज्ञानो, उकाओ की श्यामा आदि ऐसे ही नारी पात्र हैं जो अपनी संघर्षशीलता, साहस और धैर्य में अप्रतिम बन पड़े हैं। व्यक्तित्व संपन्न शिक्षित नारी पात्रों में अंधेरे बंद कमरे की नीलिमा, 55 खंभे लाल दीवारे की सुषमा, रुकोगी नहीं राधिका की राधिका, टेरा कोटा की मीति, रेत की मछली की कुंतल, आपका बंटी की शकुन, मुक्ति बोध की नीलिमा, छाया मत छूना मन की वसुधा, मुझे चांद चाहिए की वर्षा वशिष्ठ दिव्या कात्याल, छिन्नमस्ता की प्रिया आदि का समावेश हो सकता है, जो अपनी व्यक्तित्व की गंध से पाठकों को मुग्ध कर देते हैं। मंजुल भगत की अनारो और मैत्रेयी पुष्पा की मंदा को भी यहाँ विस्मृत नहीं किया जा सकता। इन नारी पात्रों की बुद्धि प्रतिभा, उनकी निरंतर संघर्ष क्षमता, उनका अलीकी व्यक्तित्व तथा उनका अदम्य साहस उन्हें अन्य मिमियाते और भुनभुनाते हुए नारी पात्रों से अलगाता है। ये नारी पात्र नारी चेतना को अग्रसरित करते हैं और इस आधे विश्व को न्याय दिलाने की निरंतर कोशिश में जूझते रहते हैं। समाज में कुछ ऐसी नारियाँ होती हैं जिनके कारण ही औपन्यासिक लेखन में इस प्रकार के पात्रों की निर्मिति संभव हो सकी है। अतः इन नारी पात्रों को हम इस रूप में ले सकते हैं कि भविष्य का इतिहास इनके द्वारा रचा जाएगा। समाज में ऐसे लोग कम होते हैं, पर समाज, इतिहास तथा उसके चिंतन को दिशा इन्हीं लोगों से मिलती है। पैराग्राफ चीन। समकालीन साहित्य में नारी विमर्श और दलित विमर्श, ये दो महत्वपूर्ण पहलू विशेषतः उभर कर आए हैं। प्रस्तुत अध्ययन में एक निश्चित सीमा मर्यादा में उपलब्ध उपन्यास के नारी चरित्रों को समेकित किया गया है। अलग अलग कालखंडों के नारी चरित्रों का इसी प्रकार का अध्ययन किया जा सकता है। आलोच्य लेखकों तथा लेखिकाओं के उपन्यासों पर अलग अलग कार्य भी संपन्न हो सकते हैं। पृष्ठ संख्या 265। पुरुष लेखक और नारी लेखक के एतद् विषयक विमर्शों पर तुलनात्मक दृष्टिपात हो सकता है। मुझे अपनी सामर्थ्य, शक्ति तथा बुद्धि प्रतिभा का एहसास है। अपनी मर्यादाओं को मैं जानता हूँ, अतः विद्वत जनों तथा सुधी समीक्षक जनों में प्रथमतः नतमस्तक हूँ। कोई भी कार्य पूरा नहीं होता, यह तो चलते रहने की एक प्रक्रिया है। साहित्यिक शोध विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भांति निश्चयात्मक भी नहीं। साहित्य की दृष्टि भेद को काफी अवकाश है। अपनी क्षतियों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अंत में यही निवेदन है कि मेरे इस शोध कार्य से हिंदी की औपन्यासिक आलोचना को यदि कुछ गति मिली है तथा नारी विमर्श के कुछ नए आयाम खुले हैं तथा भविष्यत अध्येता एवं अनुसंधित्सु यदि इससे किंचित मात्र भी लाभान्वित होते हैं, तो मैं अपने परिश्रम को सार्थक समझूंगा। समाप्त।